सुख शांति। जीवन जीने की कला का सुंदर समन्वय। सुख शांति।
इंसान को इस समाज में जीने का ये तरीका जो है ये सिखाइए सर, बगैर किसी के साथ चले हुए, बगैर ऊपर वाले की उंगली थामे हुए, बगैर नियम के छत्र छाया में चले हुए आप जिंदगी में कुछ नहीं है सर। आप उसके नियमों को पालन कीजिए और धर्म के बगैर तो इंसान कहीं जा ही नहीं सकता है। धर्म जिसमें आप बहकर एक ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। धर्म एक शाहरा है, एक बहुत बड़ा हाईवे है, एक नदी है जो आपको कहीं पहुंचाती है, एक हवाई जहाज है जो आप लैंड करता है किसी बेहतरीन जगह पर। और अगर आप उससे नहीं गए तो आपका जीवन बेकार।
मैं नागेश्वर परशुराम हंचाटे, मेरा टेलरिंग बिजनेस है। बहुत से परिवार के साथ में मेरा संबंध आता है, तो दो परिवार ऐसे हैं, एक परिवार ऐसे है कि 20-25 साल से मेरे पास कपड़े भी बड़े सिलते हैं। तो जो बाप था 25 साल पहले से मैं उसको जानता हूँ, वो हमाली करता था और उसका भाई भी टिफिन विपिन पहुंचाने का काम करता था, उसका बेटा भी वही काम करता है। और दूसरा एक परिवार ऐसा है एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड ने तो बहुत खर्चा किया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, दूसरे को कुछ डॉक्टर बनाया, बहुत कमाते हैं वो लोग, अच्छे फ्लैट में रहते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन बाप सुखी नहीं है उसका। वो बाप रोते ही रहता है, इतना मैं पढ़ाया, पूरा पैसा लगा दिया इनको मैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो हमाल बनाया वो तो एकदम खुशी खुशी आ जाता है, उसको हम पूछते हैं कैसा चल रहा है तेरा, बोल तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, रोज का 700-800 हजार रुपया बच्चे लोग कमाते हैं मेरा, कभी कभी संडे विंडे ऐसा हो गया तो ज्यादा कमा लेते हैं, खा पी के एकदम हम लोग मस्त है, पैसे वैसे का मेरे को फिक्र नहीं है। ऐसा दो परिवार क्यों? एक तो सुशिक्षित अपने आप को समझता है, हम बहुत पढ़े हैं लेकिन दुखी है वो, और ये लोग आए कुछ 7वीं-8वीं पढ़े हो गए, ज्यादा पढ़े भी नहीं हुए, तो ये लोग खुश है एकदम।
वास्तव में हम ये कहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। कई समझते मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, क्योंकि उनके मन की स्थिति ऐसी है। तो अगर ये सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो अशांति होंगे। और अगर हम ये सोचते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, तो सुख और शांति आपके जीवन में। ये एक मेडिटेशन के हिसाब से हम कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप सोचते मैं अशांत हूँ तो अशांति अनुभव करेंगे, क्योंकि ये दुख या सुख ये मन की स्थिति है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको अनुभव होगा, ये पहली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शांति तो आपसे एक सोच की दूरी पर है, या हम कहेंगे कि केवल एक सेकंड की दूरी पर है, और वो सोच आपने लाई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति तो आपके पास ही है। ये एक स्पिरिचुअल रूप है समझने का। तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई उस कूली की या जो टिफिन पहुंचाने वाले की, वो सुखी है, और दूसरा व्यक्ति जो जिसका बेटा इंजीनियर है, ये है फलाना है, और वो दुखी है, तो वास्तव में क्या कारण है कि जो टिफिन पहुंचाता है या जो कूली है वो अंतर में बहुत ही संतुष्ट आत्मा है। इसलिए कहते हैं जो संतुष्ट होता है वो सुखी होता है, क्योंकि आज असंतुष्टता या लोभ लालच ये सब दुख के कारण है। इसलिए संतोषी सदा सुखी। एक बहुत सुंदर कहावत है कि लोभी नर कंगाल है। लोभी व्यक्ति जो होता है ना वो कंगाल ही होता है। निर्लोभी सदा सुखी होता है, क्योंकि उसको ईश्वर हर वक्त देता रहता है। तो जो व्यक्ति निर्लोभी होकर के सेवा की भावना से कार्य करता है और संतुष्ट होता है जितना भी उसके पास है, तो वो सुखी होता है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि आप अपनी चद्दर अनुसार ही पैर पसारिए। अगर आपकी चद्दर छोटी है और आप पैर पसारेंगे लंबे तो ठंडी लगेगी, तो चद्दर अनुसार ही पैर पसारिए। आपकी क्षमता अनुसार ही आपका खर्चा हो तो आप उसमें सुखी रहेंगे। उसके लिए अंतर का संतोष बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अंतर में संतुष्ट नहीं है, इच्छाएं बहुत है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर गलत तरीके से धन कमाते हैं, फिर उस गलत तरीके से धन कमा करके फिर जो कुछ लाते हैं वो सुख तो देगा नहीं। वही धन सुख देगा जो दुआओं से कमाया हुआ धन है। अगर बद्दुआओं से धन कमाया या जबरदस्ती किसी से धन लिया, वो बद्दुआओं से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, ये कर्मों की गुह्य गति है। इस गति को अगर हम समझ जाएंगे तो हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हम किसी को दुख दें, क्योंकि ये भी कर्म की गति है कि किसी को दुख देकर सुख नहीं पाया जा सकता है, सुख देकर ही सुख पाया जा सकता है। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और कमाई अगर सच्ची है तो वो सच्ची कमाई तो सुख देगी। अगर हमने छल कपट निंदा चुगली बेईमानी हेराफेरी झूठ आदि ये सब कुछ खतखंडे अपना करके धन कमाया, वो धन कभी सुख नहीं देगा। तो चाहे कितना भी धनवान हो पर गलत तरीके से धन कमाया तो सुखी कभी नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति भले गरीब है लेकिन सच्चाई का धन है, मेहनत की कमाई है, तो जरूर उससे उसको सुख मिलेगा। तो ये सुख दुख वैसे मन की स्थिति है, और जैसे हम धन कमाते हैं उस अनुसार उसी प्रकार का हमें सुख मिलता है। अगर औरों को दुख दे करके धन कमाया तो दुख ही मिलेगा। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि कर्म की गति को समझना है तो सुख या दुख का अनुभव हमें उसी अनुसार ही होगा। और दूसरी बात ये भी है कि बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार भी माँ बाप के अगर मिलते हैं, वातावरण अच्छा मिलता है, तो माँ बाप का व्यवहार अच्छा होता है तो बच्चों पर उसका असर तो पड़ता ही है, परिवार का असर बच्चों पर पड़ता है। तो जो गरीब परिवार के हैं आपस में उनका बहुत प्यार है और अच्छी बातें घर में करते हैं, तो नेचुरली वही संस्कार बच्चों को मिलेंगे। तो बचपन में जो बातें उनको मिली वो संस्कार बन जाते हैं। अब जिस परिवार की बात आपने की कि डॉक्टर है इंजीनियर है और दुखी है क्योंकि बचपन में उनको अलबेला ही रखा, धन बहुत दिया तो धन तो उन्होंने व्यर्थ भी गंवाया, चलो उससे कुछ पढ़ाई भी की लेकिन धन का कदर नहीं था और जीवन के मूल्यों के प्रति भी कदर नहीं था, तो इसलिए अपने आप को दुखी रखा। तो अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चे को वो अच्छे संस्कार मिलते हैं, और अच्छे संस्कार मिलने से व्यसनों से भी मुक्त रहते हैं, जीवन भी अच्छा होता है, तो खर्चा भी कम होता है और धन वेस्ट भी नहीं करते हैं और मन में शांति भी रहती है, तो वो परिवार तो सुखी होगा ही। इसलिए धन ही सुख का कारण है ये सोच भी गलत है। चरित्रहीनता दुख का कारण है। ये सच्चा धन चरित्र का अगर जीवन में है, भले वो धन नहीं भी है तो भी जीवन में सुख और शांति मिल सकती है, ये बहुत ऊंची बात है।
सुख शांति।
कहा गया है कि जीवन में जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को अगर हम सकारात्मक चिंतन से एक बार सहन करके आगे जाएंगे तो हम जीवन में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही संदेश देने के लिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मंदिर में जा रहा था, तो जैसे ही वो मंदिर के सीढ़ियों पे जा रहा था तो उसको रोने की आवाज आई, तो व्यक्ति थोड़ा रुक गया और उसने देखा कि सीढ़ी का जो पत्थर था, जिस पत्थर की सीढ़ी पे पैर रख के वो मंदिर में जाता था, उसी सीढ़ी का पत्थर बहुत दुख से रो रहा था। तब वो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, तू क्यों रो रहा है? तब वो पत्थर उसे कहता है, देखो मेरा जीवन कितना दुखदाई है, पूरा उम्र लोग मेरे पत्थर पे पैर रख रख करके जाते हैं, उसके पैरों का बोझ ही मुझे पूरी उम्र सहन करना पड़ता है, मेरी ये दशा क्यों हुई? ज्ञानी व्यक्ति बहुत समझदार था, उसने कहा, देखो तू भी वही पत्थर है और मंदिर के अंदर जो पूजनीय मूर्ति है वो भी वही पत्थर की बनी है। लेकिन हुआ क्या, जब शिल्पकार पत्थर को ठोकने लगा तो जब तुझे ठोकना शुरू किया तो तू तुरंत टूट गया, तू उसके छीनी और हथौड़े के घाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए तुझे बाजू पे रख दिया। वापिस उसने दूसरे पत्थर को ठोकना शुरू किया, उसने थोड़ा बहुत सहन किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सहन किया, थोड़ा टूट गया, तो उसका स्थान मंदिर की दीवारों में गया, उसको मंदिर की दीवारों में रख गया। लेकिन तीसरा पत्थर जिसको शिल्पकार ने बहुत ठोका, लेकिन वो छीनी और हथौड़ी के घाव को सहन करके भी वो टूटा नहीं, अंत तक उसने वो घाव को सहन किया, तो नतीजा क्या हुआ, वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया और उसको मंदिर में स्थापित किया गया भगवान की मूर्ति के रूप में, और आज लोग उसकी पूजा करने आते हैं, और तू सहन नहीं किया घाव को और टूट गया, तुरंत हिम्मत हार गया, तो तुझे फिर और कहाँ रखेंगे, तुझे स्थान दे दिया वही मंदिर की सीढ़ियों पर, जहाँ तूने थोड़ा समय सहन नहीं किया, अपने आप को तोड़ दिया, अब पूरी उम्र लोग तेरे ऊपर पैर रख रख करके जाते हैं और वो पत्थर जिसने सहन किया उसकी पूजा करते हैं। कहने का भाव ये है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हमें बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लेना है, सहन करना है, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो, चाहे किसी की कटु वाणी हो या जीवन में आने वाले दुख हो, जब उसको हम श्रेष्ठ चिंतन से सहन कर लेंगे तो पता ही क्या होगा, परिस्थिति, कटु बोल या तो निष्फलता हमें जीवन से गिराने के लिए नहीं आती है, लेकिन हमारे जीवन रूपी मूर्ति को एक सुंदर शेप या तो आकार देने के लिए आती है। अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ बाहर आएगी और हम भी लोगों के सामने एक श्रेष्ठ आदर्श बनेंगे कि लोग हमारे जीवन को देख करके हमारी महिमा करेंगे। तभी कहा गया है कि जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है, वही महान बनता है। तो हमें जीवन में कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं है, बल्कि उसको खुशी खुशी से सहन करना है, तो हमारा जीवन भी वो मूर्ति के समान पूजनीय और यादगार बन जाता है।
मेरा नाम ज्योति रानी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, और मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो पाता?
हर इंसान आज कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, खाली स्टूडेंट्स की बात नहीं है, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, एक एग्जीक्यूटिव अपने मीटिंग्स में माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहता है, क्योंकि आज कॉन्सेंट्रेशन हर कार्य के सफलता का आधार है। जीवन में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए नेचुरल है कॉन्सेंट्रेशन बहुत आवश्यक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि मन जो है अनेक दिशाओं में भटक रहा है। कभी कई प्रकार की डिजायर्स उत्पन्न हो जाती है, उस तरफ भटक जाता है, कभी कई प्रकार की आसक्ति आ जाती है, उसमें भटक जाता है। फैसिनेशंस इतने हैं, अट्रैक्शंस इतने हैं दुनिया के, तो इन सब बातों में मनुष्य की जब रुचि बढ़ जाती है और इतना डाइवर्सिफाइड हो जाता है माइंड, तो जो फोकस होना चाहिए वो नहीं है। भावार्थ ये है कि जीवन का जो एम है वो व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए। जब जीवन का एम क्लियर है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, तो अनेक प्रकार के एक्सटर्नल जो डाइवर्सिफिकेशंस है माइंड के लिए, वहां से वो अपने आप को डिटैच कर सके। लेकिन ये डिटैच करने के लिए पुनः उसके पास विल पावर की जरूरत है, और कॉन्सेंट्रेशन और विल पावर दोनों हैंड इन हैंड चलता है। विल पावर होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। विल पावर ही नहीं, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अनेक बातों के अंदर उसको भटकना आसान हो जाता है, तो फिर व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। विल पावर बढ़ाने के लिए व्यक्ति के अंदर दृढ़ता की जरूरत है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर दृढ़ता आ जाए, फोकस्ड हो जाए, तो विल पावर को भी बढ़ा सकता है, और विल पावर के साथ साथ वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ा सकता है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, कि जिस टूल के माध्यम से वो कई प्रकार से अपने जीवन के अंदर विल पावर को भी विकसित कर सकता है और एकाग्रता को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप ही है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। आत्मचिंतन से आरंभ करते हैं और धीरे 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 करके फिर वो वही टेक्निक को हर कार्य में भी यूज कर सकता है।
सुख शांति।
शरीर का नाम हुआ शशिकांत सिंह। ऐसे मेरा नेटिव प्लेस तो बिहार है, मैं बॉम्बे में तारापुर में रहता हूँ। हमारी इंडस्ट्री है तो वहाँ करीब 200 लोग काम करते हैं। हमारे लिए एक समस्या थी कि इन लोगों को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि आज कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी आदमी अपने अपने स्वभाव संस्कारों से अलग अलग रूप से कार्य करता है, जो कि डिस्टर्बेंस पैदा करता था। तो ये ज्ञान मिलने के बाद में एक ये समझ में आया कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेन पावर इम्पोर्टेंट है, वो उस इंडस्ट्री का ड्राइवर है, वैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर में आत्मा जो है वो ड्राइवर है। तो अगर उस शरीर से हमको अच्छे कर्म कराने हैं, अच्छे आउटपुट चाहिए, तो जरूरत इस बात की है कि उस ड्राइवर के संस्कारों को चेंज करना, और वो होता है मेडिटेशन से, जो राजयोग मेडिटेशन इस संस्था में सिखाया जाता है। तो जब भी मैं यहाँ पहली बार आके गया तो हमारे फैक्ट्री में मेडिटेशन रूम बनाया, सबको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, और मेडिटेशन करने के बाद में उन्हों के जीवन में, उनके व्यवहार में, कर्मों में काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो आज 200-250 लोग भी हो गए हमारे यहाँ काम करने वाले, लेकिन बहुत ही स्मूथली सारा कारोबार हमारा चलता है, और लोगों में विश्वास हमारा बढ़ गया, लोगों से उनका भी हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया, तो सारा कार्य हमारा स्मूथली चलता है।
ओम शांति। एक माँ और एक जवान बेटी, इन दोनों की समस्या पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के टकराव की समस्या है। आज आपके सामने माँ अपनी पीढ़ी की समस्या प्रस्तुत करेगी, एक जवान बेटी अपनी पीढ़ी की बात प्रस्तुत करेगी, और इस टकराव का निवारण क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करेगी ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन। तो आइए देखते हैं।
हमारे हिसाब से माँ और जवान बेटी के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, उसका पहला जो रीजन है मुझे यही समझ में आता है कि माँ बाप जब बच्चों को बड़ा करते हैं, कितना भी वो बोलें कि हमें बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें अपने लिए उम्मीद नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको उन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें माँ बापों को परेशान करती है और वो शायद इससे दुखी भी हो जाते हैं। और एक सबसे पहली वजह मुझे यही लगती है कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो आज की इतनी बिजी लाइफ में इतना कम हो गया है कि उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ही नहीं है। वो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, आपको ये लाके दिया और क्या चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चीजें और प्यार दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप कितनी भी चीजें दे दो माँ बाप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपसे चीजों के लिए आपको इतना बड़ा नहीं करते हैं, वो आपके प्यार के लिए आपको बड़ा करते हैं। आप प्यार के दो बोल तो बोलो, दो मिनट आके पास तो बैठो, सोचो तो कि माँ बाप ने इतना बड़ा तुम्हें किया है, उन्हें भी तो तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन बच्चे आजकल नहीं सोचते हैं। और तीसरी बात मुझे लगती है कि आजकल जो ये ग्लोबलाइज, इतना हमारी कंट्री ग्लोबलाइज हो गई है, वेस्टर्न कंट्री का इतना असर हमारी कंट्री पे इतना असर आ गया है कि बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और शायद उन्हें माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती। वो बीच में कुछ टोकते हैं, ये मत करो ये मत करो, तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चाहते हैं नहीं, इनसे इनके साथ रहने से, रोज रोज की खिड़की से तो अच्छा है हम दूर रहें, शांति में रहें, इनको पैसे देते रहेंगे और क्या चाहिए, हमारी ड्यूटी खत्म है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ ड्यूटी खत्म नहीं होती है।
मुझे लगता है मेन डिफरेंसेस पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में होने की वजह है लैक ऑफ स्पेस। सेकेंडली मुझे ये फील होता है कि जो पेरेंट्स की जो थिंकिंग है वो काफी नैरो माइंडेड होती है, वेर एज जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो काफी ब्रॉड माइंडेड होती है। थर्डली मुझे ये लगता है रीजन ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, वो उनका सेल चेक करते हैं, बैग चेक करेंगे या हर एक वो चीज करेंगे जो लैक ऑफ ट्रस्ट शो करे बच्चों के, जबकि ऐसा नहीं होता है। एवरी चाइल्ड लव देयर पेरेंट्स, बट सिर्फ उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। यही रीजन है उन्हें लगता है कि नहीं हमारे माँ बाप हमें ट्रस्ट नहीं करते, एंड पेरेंट्स को फील होता है कि नहीं हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते।
अभी अभी हमने अनीता और उनकी बेटी रिया गुप्ता की चर्चा सुनी। वास्तव में देखा जाए आज ये समस्या बड़ी कॉमन है और इसीलिए इस 21वीं सदी के अंदर हम देख रहे हैं कि माँ पिता अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं और बच्चे अपने माँ पिता को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत यंग चिल्ड्रन को डिप्रेशन आ जाता है या लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो ना लेने जैसे होते हैं। तो ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे रिया ने कहा लैक ऑफ स्पेस, या उन्होंने ये बात कही लैक ऑफ ट्रस्ट की बात कही, और या फिर उन्होंने कहा कि ऐसा माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम जो हैं उनकी बात को पूरा नहीं कर पाते हैं या हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम देखें अनीता की बात और रिया की बात को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों अपने अपने एंगल से ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, या जो वर्तमान जो समय चल रहा है वो उससे उस पर आधारित है। और जो अनीता की बात है वो उनके अनुभव के आधार पर वो अपनी बात कहती हैं। तो इन दोनों के बीच की समस्या को हल करने के लिए जो आज अधिकतर पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, मैं ये समझती हूँ सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। जेनरेशन गैप शुरू से रहा है और वो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर हमें समझने की बात है, जैसे कहा जाता है कि जब बेटी जो है अपनी माँ की चप्पल पहनने लगती है, माँ के समान हो जाती है, तो वो बेटी नहीं लेकिन वो फ्रेंड हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि माँ के पास यानी पेरेंट्स के पास इतना समय हो कि वो बच्चे की हर बात को शेयर कर सके, वो वक्त दे बच्चे की हर अच्छी बात को सुनने के लिए, उसकी बुरी बात को सुनने के लिए। जब माँ उस बच्चे की बात बिना किसी रिएक्शन के सुनती है तो बच्चों को डर नहीं लगता और उनको लगता है कि हम हर बात जो है अपने माता पिता को बता सकते हैं। और समय देखकर बजाय उसी समय रिएक्ट करने के, समय देखकर वो बच्चों को गाइड करें कि देखो बेटा या देखो बेटे ऐसा नहीं ऐसा होता है। जब इस प्रकार का कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है और इस प्रकार की शेयरिंग होती है तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। उसमें क्या होता है, बड़ों को थोड़ा सा अपने बच्चों को देखकर, समय को देखकर, वातावरण को देखकर, परिस्थिति को देखकर थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है, कभी कभी सहन भी करना पड़ता है, कभी कोई कहीं पर एडजस्ट भी करना पड़ता है। इसी प्रकार बच्चों को भी क्या करना होगा कि अपने माँ बाप को अंडरस्टैंड करना होगा, उन्हें ये समझना होगा कि हमारे माँ बाप हमारा हित चाहते हैं। हो सकता है कि आज हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे, हो सकता है कि आज उनकी बात जो है वो हमको अपील नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उनकी बात जो है वो सही सिद्ध हो। तो उस प्रकार का विश्वास बच्चों को भी अपने माता पिता में होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे बच्चे समझते हैं कि हमारे माँ बाप की थिंकिंग तो बहुत नैरो है, हमारी थिंकिंग तो बहुत ब्रॉड है। ऐसा नहीं है, थिंकिंग नैरो और ब्रॉड की बात नहीं है, ये समय का फेर है। पहले समय कुछ और था जिस समय में आपके माँ बाप पले और बड़े हुए, और आज का समय और है जिस समय आप पल और बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको उस लेवल को सोचकर अपने माँ बाप को समझना होगा कि कभी कभी उनको लगता है कि हमारी थिंकिंग नैरो है, लेकिन वो नैरो नहीं होती है। और वो अपने माता पिता को समझा भी सकते हैं, प्यार से भी बता सकते हैं। तो इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे का एक दूसरे पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए माँ बाप को रोल प्ले करना होगा। और माँ बाप को क्या रोल प्ले करना होगा, अपने बच्चों में उनके प्रति विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, उनका दिल जीतने की आवश्यकता है। और वो तभी हो सकता है जब वो हर रोज उनसे शेयरिंग करें, बात बात पर नाराज ना हो जाएं और बात बात पर अपनी जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके ऊपर थोपने की कोशिश ना करें कि तुम ये करो ये करो ये करो। कोई भी बात कहने का तरीका जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। अगर माँ बाप अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं तो बहुत प्यार से उनको अपनी बात मनवा सकते हैं। कहा जाता है अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे की बात भी कभी माननी भी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है। तो समय देखकर इस बात को हम सही कर सकते हैं और इस समस्या को सुलझा सकते हैं।
सुख शांति समृद्धि सफलता संस्कार और स्वास्थ्य के स्वर्ण सूत्र।